ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं तम नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। एक दिन एक पंडित आए, गणेश नंबरदार पराये आया करे आश्रम के, वही तो पंडित थे। आए बोले महाराज चार दिन बाद एकादशी है, बड़की एकादशी है महाराज, इसका नाम है देव प्रबोधनी एकादशी। तो महाराज तो कुछ जानते ही नहीं थे एकादशी क्या होता है, बैरागी भूखे रहते हैं हर एकादशी 24 एकादशी। बोले कहो पंडिती क्या होती है एकादशी। बोले महाराज एक भीमसेनी एकादशी होती है और एक ये बड़की एकादशी होती है। बताया इसमें महाराज फलहार रहा जाता है, इस एकादशी का यही नियम है। वो कह के वो तो चले गए। इतने में वो दिन बीत गया, एकादशी आ गई। तो साधक दो चार थे, वो खुसुर पुसुर करने लगे, अच्छा तो आज एकादशी, महाराज को याद आ गया। कहा क्या थे रे, आज है एकादशी, भोजन न बनी। जो वैष्णो लोग 12 महीना 24 एकादशी भूखे रहते तो एक दिन नहीं रह सकते हो, चलो एकादशी। भोजन बना ही नहीं, जब 2 बज गया तब बोले देखो तो ना, एक दिन भोजन नहीं मिला तो नानी याद आ गई, कैसे मुंह लटका के फलानुमा बैठा वहां पर। ओके देखो तो जैसे माई मर गई, कैसन बैठा मुंह लटका के, एक दिन भोजन नहीं मिला तो सज्जी कर्म हो गया। आस्ते आस्ते 4 बज गया तब बोले फलार बना रे, ए नटवा भंडारी जी नाटे थे, खुश हो तब तो शिवानंद जी बहुत खुश हो तो नटवा तब फलार बनने लगा। हमें नहीं मालूम था कि एकादशी क्या होता है, नहीं मालूम था फलहार भी बनता है। रात को 7 बजे 5 प्रकार का फलहार मिला, बहुत अच्छा लगा। उसमें सिंगाड़ा का हलवा भी था, पता नहीं क्या क्या था। तब हम बोले महाराज हर एकादशी रह जाए तो कैसा रहे। बोले तो क्या मालूम है, भोजन तो 25 रुपए में आश्रम भर का हो जाते, आज 100 रुपया खर्च हुआ है। वो सस्ती का जमाना था, ससुरन के मुंह लग गया है हलवा और कचौड़ी, सिंगाड़ी कचौड़ी भी बनती है ना। बस फिर साल बीत गया, उस एकादशी में वही 8-10 जने थे। फिर एकादशी आई तो 15-20 दिन पहले ही से बाबा लोग रटा करें, अब इतने दिन बाकी इतना दिन बाकी है। महाराज क्या कह रहे, क्या खुशुर फुसुर कर रहे हो। बोले महाराज आज से 15वें दिन एकादशी। बोले तो उसे कहा मतलब जा, होने दो। चुप हो गए। फिर 10 दिन बाकी रात फिर एकादशी, फिर 4 दिन बाकी रात फिर एकादशी। महाराज हो तो का हर जाए। बोले अच्छा अच्छा तुम लोगों का मन हो तो हो जाए दो। तो फिर 25 आदमी हो गए उसमें एकादशी, और एकादशी चल डगरी। वो एकादशी तब फिर महाराज ने अर्थ बताया, बोले भैया जीव की अनंत दशा है, कौन सो जोनी जन्मे जहां नाही, मैं खगेश भरमी भरमी जग माई, देखे सब करी कर्म गोसाई, सुखिन भयो बही की नाई। इस बार कौन सुख मिल गया, यही तन राम भक्ति मम जामी, ताते मोही परम प्रिय स्वामी। इस तन से राम की दुर्लभ भक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए परम प्रिय है। विभक्ति माने अलगोजी होता है, भक्ति माने भगवान से जुड़ना होता है। आज भगवान का दर्शन स्पर्श और विलय प्राप्त हुआ, तब ये ऐसी दशा है, ये दशा सदा एक रस रहने वाली है, फिर इसमें परिवर्तन कभी नहीं होगा, न जन्म होगा न मृत्यु, एक दशा मिल जाए, फिर उस दशा में कभी परिवर्तन न आवे, विशुद्ध एकादशी यही है। यहाँ जगतानंद आश्रम के बड़े रईस आदमी दर्शन करने चले गए, रामचंद्र सिंह और कौन कौन जाके बैठे ही थे, तो एक 65 साल का बुढ़ा और 58 साल की बुढ़िया, बड़ा लंबा चौड़ा शरीर, जाके प्रणाम किया, बोले महाराज एक लड़का मिल जाता है, वंश चल जाता है, दे तोरी हरामे की साले जन्म भर चूतड़ रगड़ो, अब तक लड़का ही नहीं पैदा हुआ, अब मरे की घड़ी में हम बुढ़ापा से लड़का लेवे आए हो, हम बुढ़ापा से लड़का लेवे आई है चुड़ैल कहीं की, और एक डंडा मार दिया झटके में, महाराजों को पता नहीं हम क्या कर दिए, खूब विभूति भाग यहां से। साल भर बाद ये लोग जब पहुंचे दर्शन करने, यही बरेनी वाले वो रईस लोग, उसी तिथि पर वो कोई पर्व था, ठीक उसी दिन वो बुढ़वा बुढ़िया पहुंच गए, एक लड़का ले गए, बोले ले ओ महाराज ये आपके आशीर्वाद से लड़का मिल गया। महाराज क्या देखो हो मेरे गड़े में लड़का पा गई, महाराज क्या हो मोरे रूपवा से लोक ने जने का पाए जाते, मैं हूं नहीं जानत हूं, पर आए ऐसी घटनाएं घटा करे, महाराज को भी भान न रहे, ये कोई सिद्धियां नहीं है। महाराज क्या हो हृदय से कुछ निकल जाए भगवान कर दिया करे, तो मैं कुछ नहीं करता, साधु के कुछ करना नहीं होता, ये भगवान सत्य किया करते हैं। सिद्धि सिद्धि जहां टहल करते हैं, मुक्ति भरे जहां पानी, ये उसका काम है। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जहां की चाकरी तैसी ताको वो दे, झरोके में बैठ के सबकी प्रार्थना ले लेता है, जैसी जैसी जिसकी प्रार्थना है उसको भगवान खुद देते हैं। हमारे अनुसुईया प्रवेश से पूर्व की घटना, धारकुंडी महाराज इत्यादि दो एक शिष्य थे महाराज के पास उपस्थित। धारकुंडी महाराज का छड़ी और कमंडल दीवार के सहारे ऐसे रखे हुए थे, और गुरु महाराज का सत्संग चल रहा था, अनायास छड़ी भी गिरी कमंडल भी गिरा, सीधा ढलान में गंगा की ओर चला गया, नीचे कड़कड़ 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 गंगा की तरफ, 125 हाथ नीचे। महाराज ने कहा देखा वैराग्य रूपी लठिया कर्म रूपी कमंडल, तुम्हारा कर्म गिरा हुआ है, तुम्हारा वैराग्य गिरा हुआ है, जाओ निराधार विचरण करो। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि राग का त्याग वैराग्य, गुरु महाराज के शब्दावली में वैराग्य का मतलब था निराधार विचरण, जाओ निराधार विचरण करो, रात दिन भजन करो, इसकी जरूरत है बेटा, भगवान ने ये कमी बता दिया। वास्तव में सत्संग में वैराग्य का प्रकरण ही चल रहा था, लेकिन महाराज की इतना मन लग गया था ब्रह्मचारी जी का सेवा में कि वो न हटे। सोचा जंगल है, एकांत है, सेवा भी है, भजन भी चल रहा है, बहुत कहें फिर भी न जाए, किसी न किसी सेवा का बहाना लेके किसी न किसी तरीके से रुके रहे। एक दिन एक महात्मा आ गए। महाराज ने कहा देख रहे बड़े अच्छे महात्मा आए हैं, इनका भी भोजन बना लो। और ये ब्रह्मचारी जी भोजन बना चुके थे तो मुंह बना के बोले गुरु महाराज ये तीर्थ है चित्रकूट, यहाँ तो कोई न कोई आता ही रहेगा, मैं जब दिन भर भोजन ही बनाता रहूंगा तो भजन कौन करेगा, भजन कैसे होगा, इनको आटा दाल दिलवा दिया जाए, ये अपना भोजन बना खा लें और हम जल्दी से निपटा के भजन करूं। तो महाराज बोले हमारा भोजन इन महात्मा को करा दो, आज मैं भोजन नहीं करूंगा। मजबूरी थी, भोजन बनाना पड़ा, महात्मा प्रसाद पा लिया, गुरु महाराज ने भी प्रसाद पा लिया। जब ब्रह्मचारी जी परोस के बैठे चौके में तो जान गए महाराज की अब परोस के बैठा है, तो आहिस्ते से उठ के गए चौके में, चौका माने भंडार घर में, और थाली खींच लिया। अभी ग्रास उठाने वाले थे कि खींच लिया, गर्दन पकड़ के उठा दिया, उठ भाग यहां से, तू सेवा न करी तो हमार सेवा ही न हुई। कहता भजन कब करूंगा, जा भजन कर, और भगा दिया। 24 घंटे में एक बार भोजन मिलता था, दिन में 12-1 बजे, वो परोसी थाली खींच लिया और भूखे विदा कर दिया। वो सीढ़िया के नीचे खड़े हो गए, सोचा महाराज जी का गुस्सा तो 10-15 मिनट का, थोड़ी देर में गुस्सा शांत हो जाएगा। 15-20 मिनट के बाद जहां सीढ़िया चढ़ने लगे तो बोले सीढ़िया पर पांव मत रखना, नहीं तो तोरे गुड़वा तोड़ के फेंक दे नदिया में। अब मजबूरी थी, आस्ते आस्ते जाने लगे। इतने में एक पाड़े जी गांव से दर्शन करने चले आ रहे थे, उन्होंने किया प्रणाम ब्रह्मचारी जी दंडवत, बोले ही नहीं, उनकी ओर देखा भी नहीं। तब पाड़े दौड़ के आया, महाराज को दंडवत किया, बोले गुरु महाराज ब्रह्मचारी जी रोनी सी शकल लिए कहाँ चले जा रहे हैं, बोले मोरे ऊपर नाराज होके जाते हैं, देखो ना कैसन टेढ़ा टेढ़ा चला जा रहा है। बोले अरे चले आओ ब्रह्मचारी जी, गुरु महाराज नाराज नहीं है। तो जाओ वापस लौटे, बोले लौटिए ना, नहीं तो तू के गोड़ काट के नदियां फेंक दे, बस अब तो अंतिम अल्टीमेटम मिल गया। सन्नक में चले गए, चलते ही रहे, जंगल में रात हो गई। जंगली कोल भी एक लाश फूंक रहे थे नाले के किनारे, सोचाई कड़ाके की ठंडी है, ये जो फूंक फांक के चले जाएंगे तो यही धुना तापूंगा, आज रात यही निवास करूंगा। वो चले भी गए और जहां लाश फूंकी थी उस चिता की पास में बैठ भी गए। 12 बजे करीब ये भाव आया, ये मुर्दा फूंका गया है, कहीं भूत ने हो गया हो। फिर आस्ते आस्ते विचार ने इतना जोर पकड़ लिया कि जरूर भूत हो गया और जरूर पकड़ लेगा। अब तो डरने लगे, कपकपी छूट गई। हे गुरु महाराज, हे भगवान, हे ओ, आंख खोल के देख लें, कभी इधर देखें कभी उधर, कहीं भूत आ तो नहीं गया। फिर आंख बंद कर लें। इतने में गुरु महाराज की आवाज गूंजी वहां पर, देख गंवार कहीं का, मैं तोरे साथ साथ चलत हूं, मैं तो के देखत हूं, मैं तो रखवाली करत हूं। तब तैको ने भूते से डरा थे, रे कर भजन बैठ ठीक से। ब्रह्मचारी जी ने सोचा महाराज आ गए, सोचा पीछे खड़े हैं, मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं। गुरु भगवान और माया ये सदैव सर्वत्र रहते हैं। गुरु शरीर चमड़ी का नाम नहीं है। गुरु नास्ति तत्त्वम गुरु परम, जिसका कभी विनाश नहीं होता परम तत्व, उसका नाम गुरु है। जो उस गुरुत्व को प्राप्त है वो सदगुरु है। ये सदगुरु सहज सूक्ष्म स्वरूप से सदैव साथ रहते हैं। शरीर तो उनके रहने का मकान है, इस शरीर के होते हुए ही ये स्थिति प्राप्त होती है। जिन्हें वो स्थिति प्राप्त है वो सदगुरु हैं। तो गुरु भगवान और माया सर्वत्र सदैव रहते हैं। सदगुरु की शरण में भजन जागृति के पश्चात तुम समुद्र के बीच में हो तो गुरु महाराज बिल्कुल साथ में, पास में, आगे पीछे, जितना कि हाथ पांव आपके साथ है, आपका मन जितना आपके पास है। और जागृति नहीं आई, भजन नहीं जागृत हुई, तो फिर पास में बैठे हो तब भी समुद्र पार, भजन एक जागृति है। अब ब्रह्मचारी जी चलते ही चले गए, डेढ़ साल तक विचरण करते रहे। उनकी भूत की भय सदा सदा के लिए चला गया। न भूत का भय न किसी का भय, जो गुरु महाराज साथ चलते हैं। मैं देखत हूं, मैं पैरा देत हूं, ते कोने भूते से डराते रहे। निर्भीक चलते रह गए डेढ़ साल तक, तो ठीक चला। एक दिन महाराज चौक पड़े, बोले अब तक तो वैराग्य उसका ठीक रहा, अब गड़बड़ है। तीन दिन से अब सुगुन हो रहा है, अब वो संकट में पड़ा हुआ है, अब उसकी घड़ी टल रही है, अब उसको आश्रम आ जाना चाहिए। तब उनमें प्रेरणा हुई है ब्रह्मचारी जी में, चलो आश्रम। तो नया में बोले भगवान मिल जाएंगे तब जाऊंगा। वो मन में हटकर रखा था, तब डांट पड़ी। तो सोचता मैं भक्ति कर रहा हूं, तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी, जाओ गुरु महाराज के चरणों में गिरो, माफी मांगो, अन्यथा भक्ति नष्ट हो जाएगी, यही उपाय है बचने का। उस समय प्रयागराज में थे, वो राती में जहां ये आदेश मिला तो उठ के भागे, ट्रेन पकड़ा, पैसेंजर आए मानिकपुर के आगे, टिकरिया एक स्टेशन है जंगल में, वहां उतरे और जंगली जंगल चले। महाराज कहे आवा नहीं चाहत रहा मैं, नाक में रस्सी डाल के पतंग कितने लाके यहां गिराए हूं। आते है बेटा, अब ज्यादा दूर नहीं, अब इतना दूर है, अब इतना दूर है, अब आता ही होगा। सब लोग सोचे कि डेढ़ साल से गया हुआ साधक, महाराज कैसे जानते हैं कि आता ही होगा, इतनी दूर है। महाराज झूठे कह रहे हैं। इतने में दिन के 9 बजे करीब इतने में दिखाई पड़े, बोले देख वो आ गया। जहां दिखाई पड़े मन में तो रहेगी कब चला आवे, लेकिन जहां दिखाई पड़े तो बोले हे लो, फिर मोरे कपारे पड़ गया। इन्हें भैया खाए का देव, रहे का देव, ज्ञान देव, हृदय हरवा दे, खुदे का पहना दे, फिर लगे खरी खोटी सुनाने, लेकिन वो कुछ नहीं सुने, सीधे चढ़ गए ऊपर, आके किया साष्टांग दंडवत, तब खुश हो गए। बोले बोल बेटा कैसा रहा बैराग? बोले गुरु महाराज बहुत अच्छा रहा, हर श्वास श्वास पर, पल पल पर, कदम कदम पर आप साथ में रहे और भली प्रकार भजन चलता रहा। बोले करे 3 दिन से अपसुगन बहुत होता, क्या बात थी? बोले गुरु महाराज प्रयागराज में एक रानी साहब चेत गई थी, वो कार में बैठा के प्रयाग में घुमाने लगी थी, इस मंदिर उस मंदिर, कभी जमुना कभी गंगा कभी संगम। बोले करे हम तो के वैराग्य करे भेजे रहे के रानी चेताव भेजे रहे। बेटा घड़ी टलत रही तो नहीं तो तू खत्म हो ही गया रहा। बोले महाराज बड़ी श्रद्धा से घुमावतरी। बोले श्रद्धा बच्चे बच्चे में बेटा, तू श्रद्धा लेने गया था कि भजन करने? श्रद्धा से किसी ने भिक्षा में एक रोटी दे दिया ले लिया, एक के आगे श्रद्धा तुम्हारे किस काम की? यही से बुलाए रहे बस। फिर खूब सेवा किए रहे के वहां पर, फिर कोई गड़बड़ी नहीं। एक दिन ब्रह्मचारी जी ने कहा महाराज कुत्ता वेद पढ़ रहा है। बोले क्या कहा? कुत्ता वेद पढ़ रहा है, आज दिखाई पड़ा। बोले कोई बहुत अच्छे महात्मा आते हैं आज, ध्यान रखना निकलने जाए। इतने में सुबह 9 बजे करीब एक महात्मा जांगिया का नाड़ा गले में डाले, एक जांगिया पहने लंबा लंबा और डालडा का टीन लिए, उसमें लंबा सा तार डाले, तारों पकड़े रहे, कभी कभी जमीन में छू जाए तो खर आवाज आवे, और चले आ रहे थे ओम 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 ओम। भीड़ भाड़ देखे तब बोले हु 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 हु, ताकि लोग समझे कि पगला है। उनका नियम था एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाने पाए, हर समय ओम ओम। तो नीचे यहां महाराज आसन पर विराजे, वहां गंगा किनारे वो ओम ओम ऐसे ऐसे करते रहे। महाराज बोले देख रहे वो कुत्ता वेद पढ़ते, दौड़ बुला ला। स्वामी जी गए, सादर प्रणाम किया, पकड़ के ले आए, तो महाराज के पास आके ही हो हो ओम ओम। बोले तो ढोंग धतूरी हूं नहीं छूटा, देखत नहीं हो कहां आए हो? तब हंसे और सादर प्रणाम किया। बोले महाराज अच्छा तो आप भी राजे हो यहां पर? तब जान पहचान हो गई, प्रणाम किया और बैठ गए। रहे 2-3 दिन कायदे से, ब्रह्मचारी जी ने बड़ी सेवा किया उनकी। तब बोले 6 साल सेवा करो, गुरु महाराज की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी, तुम्हें निवृत्ति हो जाएगी। और फिर ताके इधर उधर बोले जंगल की ओर देख के, ये जंगल कट जाएगा। फिर बोले यहां गाय चरेगी, 2-3 पॉइंट बताया और फिर विदा हो गए। स्वामी जी पहुंचाने गए मिल 1 आध किलोमीटर। दारुकुंडी महाराज और भगवान आनंद जी वगैरह दोपहर में जब रेस्ट का समय हो ना तो चले जाए जंगल में, 2-10 दिन में एक कुटिया बना डाले। तब बोले गुरु महाराज आदेश होता मैं कुटिया में रहता। बोले मैं जानत रहूं तो जंगल में आवज जा तो कुछ खुरापात करी हो।
ठीक है, 7 दिन में 1 दिन मोर दर्शन कर लिया कर और रहो मैं घोर जंगल में। वो कुटिया तो बढ़िया साफ जगह में बनाए रहे हैं, लेकिन पहाड़ से शेरों के उतरने की पगडंडी वही थी। ये कुटिया है, ये पगडंडी 4 फीट के पास से। अब सिरवे आवा जावा करें वही रास्ता। एक दिन स्वामी जी को आदेश हुआ, बाहर ई कुटिया ई मचान, इसी पे रात में बैठा करें, भजन करें, सोया करें खुली हवा में। आदेश हुआ सोना मत, बैठे रहो। बैठे रहे, 12 बज गया तो जोरों से आदेश हुआ सोना मत, तो नहीं सोए, बैठे रह गए। करीब 12-1 बज गया तो बोले अच्छा सोऊंगा नहीं, दर्द थोड़ा कमर में दर्द हो रहा है, थोड़ा कमर सीधी कर लूं। अब मचान का मतलब होता है लकड़ी, ऐसे ऐसे टुकड़े पड़े रहते हैं, उसी का नाम मचान है, गद्दा नहीं रहा। यही महात्माओं का सब ठाट बाट है। थोड़ा अपशगुन हो रहा है, थोड़ा सा कमर सीधा करने के लिए लेट गए, जहां शिक्षों से पीठ लगा फक देना नींद आ गई। इतने में एक शेर आया, आके यहां बैठ गया, पीछा का भाग जमीन पे रखा, आगे के यूं यूं सूंघत रहा कि इस मचान के ऊपर नाश्ता पानी है कि नहीं, और कब दर्शन करे थोड़ा ही आया रहा। एक जंप में ऊपर आता, उठाता, लेके चल देता। इतने में गुरु महाराज की आवाज तड़की, आवाज ही नहीं तड़की, हाथ पकड़ के 1.5 फीट करीब 1.25 फीट ऊपर उठा दिया। उठ गमार कहीं का, कहा ना सोना मत, नींद में जल्दी आंख नहीं खुलती, जब इतना उठा दिया जमीन से, उठ गमार कहीं का, कहा था ना सोना मत, सुतत है। तो सोचा महाराज खड़े हैं ऊपर, तो डर के मारे ताके उधर महाराज के देख रहे, महाराज थे ही नहीं, फिर छोड़ दिया। तो फिर तुरंत देखा इधर तो शेर बैठा था, बोली करिया करिया क्या है, टॉर्च उठा के मारा तो उसके मुंह पे पड़ी, वो आस्ते से उठा, झाड़ी के आड़ में चला गया। फिर रात भर श्वास रोक के शेर खड़ा रहा। अब स्वामी जी की नींद हवा हो गई। अब नींद आवत है, अब रात भर स्वामी जी अकड़ के बैठे रहे। सुबह 5 बजा तो स्पीड, शेर ने स्पीड पकड़ लिया, सर 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 4-6 कदम में गंगा पहुंच गया, 4-1 छलांग में गंगा उस पार कर लिया। जंगली शेर बहुत मजबूत होते हैं। और उस पार फिर मिर्गे बोलने लगे, पिक 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 भागने लगे, बोले अच्छा अच्छा तो अपने भोजनालय में पहुंच गया। और क्या, मोर बोलने लगे, सांबर बोलने लगे, मिर्गा बोलने लगे, बोले अपने, वही तो उनका भोजनालय, और क्या, एकाद की गर्दन पकड़ लेगा, हो गया। इस तरीके से गुरु भगवान और माया सर्वत्र रहते हैं। भजन साधकों का तब पार लगता है जब सदगुरु आगे पीछे सदैव रहे, वो देख रेख करें, उन्हीं के निर्देशन में साधना माया के खोखंद काटते हुए ले चलते हैं। भगवान का दर्शन स्पर्श प्रवेश नहीं मिल रहा था, तब तो गुरु महाराज ऐसे ही देख रेख किया करते, अन्यथा मन और बुद्धि इनमें कहाँ क्षमता सही रास्ता देख लें, क्योंकि मन और बुद्धि माया तक सीमित है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में जहां तक मन उड़ान भरता है, बुद्धि निर्णय लेती है, सो सब माया जानो भाई, वो सब माया है। बुद्धि माया तक निर्णय ले पाती है, मन माया तक संकल्प कर पाता है। भगवान अचिंत्य है, अगोचर है, इंद्रियों से परे, चित्त और चित्त की तरंगों से परे, बुद्धि के विचारों से परे। तो भला बुद्धि, आपके विचार, आपका चिंतन, भला उसका निर्णय कैसे ले लेगा।
बस 6 महीने के अंदर सामने का जंगल कट गया। एक महात्मा 40 गाय लेके आए, मैदान देखा तो उसमें चराने लगे। महाराज ने कहा देख रही और सफेद सफेद क्या दिखाई देता पहाड़ पर? बोले महाराज जी गाय चर रही। बोले यहाँ तो जंगल था। बोले भारत आजाद हुआ तब से ठेका मिला और कोनो कटवा लिया। तो बोले वो महात्मा ने क्या कहा था? बोले जंगल कट जाएगा, गायें चरेगी। बोले दो बातें तो सही हो गई उनकी। और क्या कहा? बोले हमसे कहा कि 6 साल विधिवत सेवा कर तुम्हें निवृत्ति हो जाएगी आवागमन से, तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। जोन लगन से लगे और 6 साल महाराज ने कहा बांध बिस्तरिया से, अब निबुआ फट गया बेटा, निर्गुण दो भागों में बट गया, जल्दी भाग धारकुंडी जा, वहां जा तो फिर सब प्राप्ति हो जाएगी। जबरदस्ती भेज दिए धारकुंडी,
दर्शनार्थियों की वहां लाइन लग गई। माई बड़ी श्रद्धालु होती, माई लोग पहुंच गई। तब बोले पाड़े को बुलाया, पाड़े जा रहे फिर गड़बड़ा। बोले क्या हुआ महाराज? तोर ब्रह्मचारी वहां भीड़ में बैठ के मेरी अताकत है महाराज की भाषा तो गए। बोले क्या ब्रह्मचारी जी? महाराज ऐसा क्या? बोले भाई हम केहू के नहीं देखे थे, देख चश्मा लगाए हैं काला वाला। तो महाराज सुने बोले सार चश्मा के भीतर से ताकत बोले यार हम कैसे जी तू ही बता। तो फिर नियम बनाया, माई लोग इधर विराजे, पुरुष इधर विराजे, वही नियम यहाँ लागू है। तबे आप लोगों को अलग बैठाते हैं इधर, तो गुरु महाराज का दिया हुआ नियम है।
वहां जाते ही सब कुछ उन्हें जो भगवत स्वरूप की प्राप्ति स्थिति रहनी सब कुछ मिल गई। वे हैं स्वामी सच्चिदानंद, अभी हैं शरीर से, काफी दीर्घ जीवी 90 साल करीब उम्र है वो सिद्ध पुरुष।
हम तो भटक के पहुंच गए, हमें नहीं मालूम कहां चित्रकूट, हमने नाम भी नहीं सुना था, न चित्रकूट न अनसुईया, हमने अयोध्या का नाम नहीं सुना था, मथुरा का नहीं सुना था, हमने केवल हरिद्वार सुना था, गया सुना था, लेकिन मथुरा वृंदावन गोकुल अयोध्या यहाँ भगवान जन्मे थे ये हमारे कान में कभी नहीं पड़ा था। उम्र हो गई 23 साल। उधर जहां थे उधर या तो देवी और या फिर ये फलाने दादाजी, युद्ध में सिर कट गया, उसके बाद में तब तक तलवार चलाया जब तक अंतिम शत्रु मर नहीं गया, उनका ये समाधि है, यहाँ प्रणाम कर। और लपट इतनी इतनी उठे, एक ज्योति होती है लोहे की, वो डंडा घुमाओ। भगवान का कोई खास माहौल नहीं था, किसी किसी के यहाँ राम लक्ष्मण सीता नीचे हनुमान बैठे हुए फोटो देखने को मिला, और देवी तो भरमार रही, लेकिन सब नहीं पूजा करें, ये विशाल मंदिर है तो आप नहीं पूजा कर सकते, ये इनकी देवी और ये मंदिर उनकी देवी, और देवी ठाकुरन के लड़ावत रही है। हम बड़े साला बवाल क्या है, हमारे पहुंचने से गुरु महाराज के यहाँ एक कानपुर सिकटियापुरवा जमींदारों का गांव, पूज्य भगवान आनंद जी महाराज वहीं के थे, इसीलिए उनके संसर्ग से 6 नवयुवक आके टिक गए वहां पर, 3 महीना रुके रहे जंगल में, हम सब साधु होंगे। महाराज ने बहुत समझाया घर जाओ जावे ही ना, तीन महीने बाद महाराज ने कहा देखो तुम्हारे संस्कार में सदुवाई नहीं लिखी है, कमाओ खाओ सबको खूब बरकत होगी। हाँ इस लड़के का संस्कार है, सब तो चले गए एक टिक गया। दो दिन बाद महाराज बोले नाम तो यही है लेकिन व्यक्ति तो नहीं, व्यक्ति कोई और है। तो बेचारा वो भी चला गया, लगा डंडा लेके पहरादारी अहमदाबाद में, और वहीं पर 2 साल बाद भटक के हम पहुंच गए। तो हमारे पहुंचने से पहले ही महाराज को अनुभव में दिखाई पड़ा, नदी में भयंकर वेग है, बहुत करंट है पानी में, सर सर पानी बह रहा है, काला पानी, भयंकर लहर, एक नव युवक किनारे बैठ के रो रहा है, वो पार जाना चाहता है, इच्छा कुछ नहीं है सिवाय पार जाने के, जानता कुछ नहीं है लेकिन पार जाना चाहता है। महाराज के हम गए, उसको पकड़ के उठाया, काहे रोवत है, न रो, उतर पानी में, पाउंड पाउंड 7 हाथ पाउंड चला। तो बोले ऐसे ही तुम पाउंडत रहो, पाउंडना सिखाया महाराज ने, अब पाउंडत रहो, ते पार हो जाए मैं देखा तू, तू घबरा नो, लहरों से न डर। वो पाउंड चला और महाराज कह मैं देखा तू तो पार हो जाइए, और पाउंड चला। अब महाराज ने जब देखा तो बोले कोई अधिकारी है, कोई इच्छा नहीं उसके अंदर, केवल पार जाना चाहता है, जानता कुछ भी नहीं है, और वास्तव में वो कुछ भी नहीं जानते। जब अयोध्या का नाम नहीं सुना, मथुरा का नहीं सुना, राम जी का नहीं सुना, कृष्ण जी का नहीं सुना, तो क्या जानत रहे। तो बस दिन को 10-11 बजे जब पहुंचे हम, देखते हुए चेहरा मिलाया हम ही थे, महाराज जो देख रहे हैं सांवला सांवला आदमी ने वो हम ही थे। जहां हम पहुंचे तो बोले अरे पंडा का लड़का रहा, तो बोली अनसुईया, तो खुली मूर्ति, कपड़ा एक भी नहीं, अष्टभुजा जैसी कई उसकी हाथ थे, फटकी टूटी हुई खिड़की थी, उसमें आर पार आने जाने के रास्ते, प्रणाम कर लिया, प्रार्थना कर लिया। हमारी आदत थी एक बार चले गए तो ड्यूटी हो गई, बार बार क्या तंग करना, दोबारे कभी नहीं जाए, एक बार कह तो दिया, भगवान को बहरे का नाम है, रोज रोज नाक रगड़ना ये कौन भजन, रिक्वेस्ट करने गए थे एक बार कर दिया, नहीं रोज रोज हम गिड़गिड़ाए वो सुने ही ना, तो भगवान है कि पागल है। ये आदत पहले से रही है, तब वहां भी रिक्वेस्ट कर दिया, और तो 15-25 जो देवता होते सब जगह घुमा दिया वो। हम बोले और कुछ, बोले अंठे परमहंस रहते। हम बोले परमहंस क्या होता है, बोले महात्मा, तो महात्माओं में श्रद्धा थी। बोले ले चल गए तो महाराज मिल गए। जितने महात्मा हमने देखे थे जीवन में सबसे अच्छे लगे, जाते हंसे और बोले मोड़ी पट को विभूति लो, साधु तो नहीं होना है। हम बोले बाप रे फोड़ने लें, बाबा लोग बहुत जादू टोना जानते हैं, साधु तो होना, कह देंगे तो आफत में हो जाए। तो हम कभी झूठ बोले ही नहीं थे, अभी झूठ नहीं बोलते हम। तो लपेटुआ बोले सीधा कह दे होना है तो कहीं फोड़ने लें, और झूठ बोलना नहीं। हम बोले महाराज कोई अल्टीमेटम तो नहीं दे सकते अगर साधु होंगे, हमारे कहने का मतलब है कोई चैलेंज तो नहीं कर सकता, किसी के बस का तो नहीं है। बस गोलमाल उत्तर दिया, हट गए वहां से, फिर ने कुछ पूछे। जब हम उतनी दूर चले गए महाराज के यहाँ बहुत सारे कवई काटे थे, हमने याद कर लिया। साल भर बाद जब वहां रुक गए तो लोगों से पूछा अबाऊ सार कवई काटते थे, एक का मतलब हुआ, बोले अबाऊ सार पैंतरा भांजे थे, चकमा दे थे, हम लोगों के बेवकूफ बनाओ तो बोले ओ ये मतलब हुआ, महाराज ने ठीक पकड़ा, यही तो हम करते रहे और क्या। बस रुक गए। फिर बाद में 7 दिन कुछ दिन बाद हम सोचे यहां से भाग चलो, भजन तो हमें करना, गुरु महाराज जो बताना था बता दिया, हमें क्या मालूम गुरु महाराज उंगली पकड़ के ले चलते हैं प्रकृति के द्वंद से बचाते हुए। उस दिन जो बहुत संतों की महिमा बताते थे एक पंडित, वो भी हमारे साथ ही साथ, हमने नहीं बताया हम भजन करेंगे, वो बतावे कि हम करेंगे, वो दिखाई पड़े। हम बोले कि ओ मुखर्जी ये हमारे महाराज गुरु महाराज कैसे हैं, तो बोले अनादि काल से जैसे होते आए हैं, जैसा एक महापुरुष को होना चाहिए, सब लक्षण आप में विद्यमान है, आपके गुरु महाराज यही हैं जो ऊपर बैठे हैं। उस दिन से श्रद्धा जग गई, तो हमारे मस्ती में भजन में बैठे ही रह गए। पुराने जमाने के 125 साल के किवाड़े लकड़ी सुकड़ गई, उसके बीच में इतने इतना छेद रहे, उनमें से गरम गरम धाम लगा, सूरज निकला तो उसकी किरण लगी, तो हम उठे बोले अरे सूरज तो निकल गया। महाराज का आदेश था कि सूर्य निकलने से थोड़ा पहले, जब रास्ता समझ में आवे तब आसन छोड़ दो, गंगा किनारे घूम के आओ, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होके सूरज निकलते निकलते इस पहाड़ पर एक लाठा, जब सूरज ऊपर उठे इसके बीच में मुझे प्रणाम कर लो, विभूति खा लगा लो, ये आदेश था। और सूरज एक लाठा उठ गया, हम बोले पहले प्रणाम कर ले, फिर आदमी धोबत रत दिन भर पड़ा है, जहां जाके प्रणाम किया तो महाराज उधर ताकत रहे जैसे हमसे मतलब है नहीं, और जहां प्रणाम किया तो जलता हुआ लकड़ उठा के, तो एक लकड़ मारा पीठ में, चादर जल गई, पीठ जल गई, लड़ते आग भी तो है, हम खड़े हो गए, महाराज कोई भूल हो गई क्या, तो सड़सा उठा के फेंक के मारा तो यहाँ लगा, हम बोले अरे यहाँ लगता तो आग फूट जाती। फिर सरवा कहते भूल हो गई का, चुतरे पे घाम लगा तब उठे है, हम बोले महाराज हम बैठे बैठे भजन कर रहे थे, बोले सार बैठे बैठे सोएगा। माने नहीं, फिर 50 खरी घोटी सुनाए, एक बार डांट पड़ जाए तो 15 दिन के लिए टाइम टेबल फिक्स हो जाए, फिर साधकों से भूल हुआ ही न करे, वो टाइम से जागे टाइम से बैठे, लापरवाही असंभव, इसीलिए डांटा करे महापुरुष, कभी किसी को कोई अपशब्द न कहा करे, वो तो साधकों की भलाई के लिए डांट फटकार, क्योंकि उसकी मानसिक कमजोरी को दूर करने के लिए, साधना का पथ प्रशस्त करने के लिए डांटा करते हैं। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।